सुनिए बाल कहानी जया टंडन से। पंचवटी।
तीनों किसान का खेत घर से कुछ दूरी पर था। घर के आसपास कुछ जगह में उसने और उसके पिता ने आम, पीपल, नीम और जामुन के चार वृक्ष लगाए थे। दीनू भी उन्हीं पेड़ों के नीचे खेलकर बड़ा हुआ था और अब दीनू के बच्चे भी उन वृक्षों की डालियों में खेलकर बड़े हुए थे। दीनू की बेटी आशा शहर के स्कूल में टीचर थी। छुट्टियों में सभी बच्चे और घर के सदस्य उन्हीं पेड़ों की शीतल छाया में फुर्सत के क्षण बिताते थे। सभी पेड़ों में पीपल का पेड़ सबसे पुराना था। वह अपने को सबका मुखिया भी मानता था। दीनू मन ही मन यही सोच रहा था कि बेटी आशा इस बार की छुट्टियों में घर आएगी, तब तक उसका अलग कमरा बन चुका होगा। वह भी पेड़ों की छाया में शीतलता का आनंद लेगी, वरना शहर की दौड़ भाग में प्रकृति का आराम किसको नसीब होता है। बसंत का मौसम था, वृक्षों पर नए पत्ते आ गए थे, पुराने झर कर जमीन पर इधर उधर बिखरे हुए थे। पीपल जो अपने को मुखिया मानता था, वह अपने आसपास सूखे पत्तों को देखकर नीम से गुस्से में बोला कि कितनी बार कहा मेरी तरफ गंदगी मत किया करो। पत्तियां? कैसी पत्तियां? ज्यादा मत बोलो, पीपल गुस्साया। नीचे देखो, मेरे आसपास कितनी सूखी पत्तियां तुमने फेंकी हैं। ओहो, यह सब? अरे पीपल दादा, यह तो मौसम के कारण झरी हैं और हवा के कारण तुम्हारे आसपास इकट्ठी हो गई हैं। नीम का यह कहना था कि पीपल गुस्से से चिल्लाया, तो मेरी बराबरी करते हो? मैं यहाँ का सबसे पुराना पेड़ हूँ। तीनों के पिता ने मुझे यहाँ रोपा था। मैं ठंडी हवा के साथ 24 घंटे ऑक्सीजन देता हूँ और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वृक्ष हूँ। पीपल का इस तरह से बोलना नीम को अच्छा नहीं लगा। नीम शांत स्वभाव का था। नीम बस यही बोला कि पीपल दादा, सारे वृक्षों की अपनी खूबियां हैं, हमें उनमें अच्छा बुरा का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह सुनकर साथ वाला आम का पेड़, जो दोनों की बातें सुन रहा था, वह तुनक कर बोला, सारे वृक्ष एक जैसे तो नहीं होते हैं, मेरे फल तो अमृत जैसे मीठे होते हैं और नीम तुम्हारे फल एकदम कड़वे कसैले। आम की यह बात सुनकर नीम को और दुख हुआ। उसने आशा भरी दृष्टि से जामुन की तरफ देखा कि जामुन तो मेरा साथ देगा, किंतु जामुन ने भी उसे उल्टा जवाब दे दिया। नीम की आंखों में बरबस पानी आ गया। दुखी मन से वह बोला, आप सभी मेरी मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन मेरी भी उपयोगिता है। बताओ तुम्हारी क्या उपयोगिता है? पीपल ने नीम से हेडमास्टर की तरह प्रश्न किया। जब किसान स्टोर किए अन्न में कीड़े ना लगे, इसलिए मेरी पत्तियों को अनाज में डालकर रखते हैं। मेरी पत्तियों की विशेषता के कारण अनाज सुरक्षित रहता है और मेरे फलों से निकला तेल तो बहुत फायदेमंद है, कीड़ों को मारता है। पर पीपल कहाँ सुनने वाला था। तभी आम ने कहा, नहीं पीपल दादा, इसकी बातों में दम तो है। आप जरा ध्यान से सोचिए। ध्यान? ध्यान से मैं क्यों सोचूं? पीपल ने आम के ऊपर आंखें तरेरी। दादा ऐसा मत कहिए, हमें इसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, आम ने पीपल को समझाते हुए लहजे में कहा। आम का साथ पाकर नीम को कुछ राहत तो मिली। तभी जामुन ने भी आंखें मटकाते हुए कहा, पीपल दादा आम सही कह रहा है, ध्यान से सोचने पर समझ में आएगा, लेकिन है तो ये कीड़े मकोड़ों का ही साथी, साधारण आदमी के जीवन में इसका क्या महत्व है। तीनों ने मिलकर जोरदार ठहाका लगाया। तीनों की बातें सुनकर नीम को लगा इन्हें समझाना व्यर्थ है और वह चुप हो गया। तभी तीनों किसान उन चारों वृक्षों के नीचे कुछ अनमना सा आकर खड़ा हो गया। उसने बेटी आशा के लिए एक कमरा तो बनवा दिया था, किंतु दीवारें और छत ढलवाने में ही उसके अधिक पैसे खर्च हो गए थे। वह यह सोचकर परेशान घूम रहा था कि दरवाजे और चौखट के लिए अच्छी लकड़ी का इंतजाम किस तरह करे। पैसे भी कम हैं और लकड़ियों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। पिता को इस तरह से परेशान देखकर बड़े बेटे ने पिता से परेशानी का कारण पूछा। तब तीनू ने बताया कि बेटी आशा के कमरे की चौखट का इंतजाम किस तरह किया जाए। तब पिता बोला, पिताजी हमारे तो घर में ही इतने वृक्ष लगे हैं, क्या इनकी लकड़ी काम में नहीं आ सकती है? इनकी लकड़ी का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं? क्यों पिताजी? बेटा बोला, इसलिए क्योंकि पीपल से हवा तो शुद्ध मिलती है लेकिन इसकी लकड़ी काम की नहीं होती। आम की लकड़ी भी ईंधन जलाने के काम तो आती है लेकिन उसकी लकड़ी के पटरे मजबूत नहीं होते और थोड़े ही दिनों में उसमें कीड़े भी लग जाते हैं। पिता और भाई को बातें करता देख छोटा बेटा भी वहां आ गया। वह बोला, अपने पास तो जामुन का भी पेड़ है, हम सब जामुन की टहनियों में कितना झूलते थे, वह तो कभी नहीं टूटती थी, क्यों ना हम इसी की लकड़ी का काम में ले ले। छोटे बेटे ने राय दी। तब दीनू बोला, यह ठीक है कि जामुन में बहुत लचक होती है, झूलने पर शाखाएं भी नहीं टूटती, लेकिन जामुन में भी एक अवगुण है। वह क्या? बेटों ने उत्सुकता से पूछा। तब दीनू ने बताया कि जामुन की लकड़ी में इतनी लचक होती है इसलिए दरवाजों की चौखट बनवाने में इसकी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर उससे चौखट बन जाएगी तो वह दरवाजों के भार को नहीं सह पाएगी। नीम और तीनों वृक्ष भी दीनू और उसके बेटों की बातें सुन रहे थे। तभी छोटा बेटा बोला, पिताजी नीम की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते? तीनू ने कहा, हाँ तो हम लोग नीम की लकड़ी की चौखट क्यों नहीं बनवा ले। बेटे ने राय दी। अरे हाँ, दीनू बोला, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, गांव में कई लोगों ने नीम की चौखट बनवाई थी, वह आज भी सुरक्षित है। दीनू और उसके बेटों के चेहरे खिल गए। दीनू ने नीम के पास आकर उसे दुलारा और कहा, तुमने तो मेरी समस्या ही हल कर दी, अब आशा बिटिया का कमरा जल्द ही पूरा बन जाएगा। किसान के साथ दोनों बेटों ने भी नीम को प्यार से थपथपाया। अरे यह क्या? तीनू के छोटे बेटे ने कहा, पिताजी यह देखिए। पीपल के तने की तरफ इशारा करते हुए बेटे को दीनू ने देखा तो देखते ही बोला, अरे पीपल के तने में तो कीड़े लग गए हैं, अब तो ये सूख जाएगा पिताजी। बेटा बोला। दीनू ने कहा, नहीं बेटा, इसकी दवाई है, हम इलाज कर देंगे। वो कैसे पिताजी? नीम के फल के साथ पत्तियों का तेल निकालकर इसके तने के आसपास और जड़ों में डालना होगा और यही प्रक्रिया 2-3 बार दोहराने पर कीड़े मर जाएंगे और पीपल पुनः स्वस्थ हो जाएगा। तब किसान बेटों के साथ नीम के फल और कुछ पत्ते लेकर घर के अंदर आ गया। उनके जाने के बाद नीम ने पीपल को देखा। पीपल जो सुबह से लड़ रहा था, अब वह अपनी गलती पर पछता रहा था। साथ ही आम और जामुन भी नीम से निगाहें मिलाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। तीनों को अपनी गलती पर शर्मिंदा होते देख नीम ने कहा, हम सभी धरती की संतानें हैं और हमारी कोई ना कोई उपयोगिता भी है। दीनू ने हम सबको पाल पोस कर बड़ा किया है, दीनू की सहायता करना हमारा फर्ज है। पीपल जो सबसे ज्यादा बोल रहा था, अब वह नीम के तेल से ही स्वस्थ होगा। वह सबसे अधिक शर्मिंदा भी इसी बात पे हो रहा था, लेकिन नीम ने सबसे कहा, हम सभी अपनी अपनी जगह दीनू किसान की सहायता कर रहे हैं। आम दीनू को ईंधन की लकड़ियां देता है, पीपल की शीतल छाव में उसका परिवार सुस्ताता है, बच्चे खेलते हैं, जामुन खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। पीपल जब नीम के मुख से सारे साथियों की प्रशंसा को सुना तो बोला, इसका मतलब तुम हमसे नाराज नहीं हो ना? नीम ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो पहले भी कहता था हम सबको मिलकर रहना चाहिए। कुछ देर बाद तीनू कुछ चौखट बनाने वालों को साथ लेकर आ गया। उन्होंने दरवाजे की नाप की लकड़ी वृक्ष से काटकर अलग कर ली। कुछ ही दिनों में आशा का कमरा पूरा बनकर तैयार हो गया। छुट्टियां होने पर आशा गांव आई और अपने नए कमरे को देखकर वह बहुत खुश थी और बार बार अपने पिता और भाइयों को धन्यवाद भी दे रही थी। तो दीनू ने कहा, बेटी धन्यवाद तो इस नीम के वृक्ष का करो जिसके कारण कमरे की चौखट के लिए लकड़ी का इंतजाम हो पाया और दरवाजों का खर्चा तुम्हारे भाइयों ने किया है। दीनू का परिवार चारों वृक्षों के नीचे ही खड़ा था। चारों तरफ हरियाली देखकर आशा ने कहा, क्यों ना पिताजी हम इन चारों वृक्षों के पास ही एक बेल का पौधा भी रोप दे, वह भी अपने औषधीय गुणों से युक्त फलों के साथ बेलपत्र भी देगा जिससे माँ और सभी को शिव अर्चना करने में सुविधा रहेगी। सभी ने मिलकर आशा की बात का समर्थन किया। अगले दिन सुबह ही दीनू का छोटा बेटा एक बेल का पौधा भी लेकर आ गया जिसको सभी ने मिलकर चारों वृक्षों के समीप ही लगाया। दीनू किसान ने सराहना भरी दृष्टि से पूरी बगिया को निहारा और कहा, मेरी पंचवटी खुशियों से भरी बगिया है। सभी वृक्षों ने लहराकर उसका समर्थन किया जैसे कह रहे हों, हम सबसे सभी का अस्तित्व है।
अर्पणरेडियो.com की प्रस्तुति।